आदरणीय भ्राता राजू भाई पधारे हुए हैं, हम सब मिलके उनको कर्तक ध्वनि से हम स्वागत करेंगे। मैं समझती हूँ आप बहुत लोग राजू भाई जी से परिचित होंगे ही, फिर भी अगर मैं उनका जीवन परिचय मैं सुना दूं कि वो बचपन से ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और 1972 से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित है। हम जो सब रोज मुरली जो सुनते हैं उसमें आपका विशेष योगदान है।
ओम शांति। कि ब्राह्मण जीवन का जीयदान कहें, ब्राह्मण जीवन में उन्नति का साधन कहें, बाबा की मुरली ही है। मुरली ने ही हम सबको अलौकिक जन्म दिया है। जिनका बाबा की मुरली से प्यार है वो सहज ही माया जीत, व्यर्थ संकल्पों से जीत, अनेक परिस्थितियों और समस्याओं से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। सभी ब्राह्मण बच्चों का प्यार बाबा की मुरली से रहता है। मुरली के लिए कई भाई बहने पैदल कई किलोमीटर तक चल करके सेंटर्स पर आते हैं। बाबा मिसाल देता है, बच्चे सवेरे सवेरे 5-6 मील से भी चल करके मुरली सुनने के लिए आते हैं। शास्त्रों में भी गायन है, मुरली के पीछे गोपियां मस्तानी थी। वो मुरली उन्होंने काठ की समझ ली, लेकिन भगवान के महावाक्य जो ब्रह्मा मुख से उच्चारण हुए, वो महावाक्य जिससे हमारी जीवन महान बनी है, बनती जा रही है, वो मुरली जो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से सुनाई, 69 तक साकार रूप में बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे रथ कभी बीमार भी हुआ तो भी शिव बाबा ने उस रथ के माध्यम से हाथ से लिख करके भी मुरली दी। आप सबने यज्ञ इतिहास अपनी दादियों के द्वारा सुना होगा। साकार में जिन्होंने पालना ली है वो सुनाते आ रहे हैं कि हमारी मम्मा बाबा की मुरली कई बार पढ़ती थी, 2 बजे उठ करके नोट्स पढ़ती थी। बाबा मुरली लिखते थे और दादियां उसको ग्रहण करके और फिर क्लास कराती थी। वो मुरली जिससे इतनी आत्माओं की जीवन महान बनी है, हम सब का कितना प्यार है उस मुरली से, हर एक अपने आप से पूछता ही होगा। जिस मुरली में जादू है, सचमुच जादू है, जो मनुष्य को देवता बना देती है, आसुरी वृत्तियों को परिवर्तित करके दिव्य बुद्धि बना देती है, ऐसी मुरली की सेवा ड्रामा अनुसार बाबा ने मुझात्मा को दी। जब मैं छोटा सा बाबा के घर में आया, बाबा के घर में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं टाइप सीखूं, और टाइप सीख करके विशेष सिंधी सीखने की प्रेरणा मिली। कि टाइप तभी सीखो जब पहले सिंधी भाषा जानते हो, क्योंकि बाबा की सब मुरलियां, दादी के सब संदेश बाबा के जो दादी के द्वारा आते थे वो सिंधी भाषा में हमारी दादियां लिखती थी, और उस सिंधी को हिंदी में ट्रांसलेशन करके सभी को भेजा जाए। इसलिए मुझे 1976 में ये सेवा पहले टाइप सीखने की और फिर सिंधी सीखने की मिली। उसके बाद हमारी दीदी जी इस यज्ञ में जो मुख्य रूप में प्रशासन संभालती थी दादी जी के साथ, एक बहुत बड़ी विशेषता थी दीदी की प्रश्न निकालने की मुरली से, और हमेशा कहती थी कि आज जो बाबा की मुरली आप सबने सुनी है, आज हम आप सबसे बैडमिंटन खेलेंगे, और ऐसे प्रश्न पूछती थी पूरे क्लास को फेल कर देती थी। क्लास के बाद मुझे कहती थी मेरी डायरी लेकर के जाओ और जो आपको अच्छा प्रश्न लगे वो टाइप करके सब सेंटर्स को भेजो। इस प्रकार दीदी की पालना जो मुझे करीब 11 साल मिली, उसमें प्रश्न उत्तर निकालना, वरदान निकालना, स्लोगन बनाना, बहुत सी ट्रेनिंग दीदी ने खुद बैठ करके दी, जो आज आप सबके पास बाबा की मुरलियां विशेष उसमें इसेंस आता है। और मुझे जहां तक सभी क्लासेज का मालूम है, भले वो पूरी मुरली में कोई पॉइंट्स न नोट करें, लेकिन हर एक की डायरी में वरदान और स्लोगन जरूर लिखे होते हैं, सभी नोट्स लेते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं, सार भी लिखते हैं। तो ये सब जो बाबा का वरदान मिला उसके आधार से आप सबके पास जो बाबा की मुरली आती है, जो हम सब के लिए एक बहुत सुंदर भोजन है बुद्धि का, अगर ब्राह्मण आत्माएं सदा हेल्दी रहना चाहती हैं इस तमोगुणी वायुमंडल में, जहां माया बहुत प्रकार से अपने खेल कर रही है, कलयुग के अंदर हर पल व्यर्थ और नेगेटिव की उत्पत्ति हो जाती है। जिस भी सेवा क्षेत्र पर आप कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रकार से नए नए रूप में माया वार करने का प्रयास करती है, लेकिन माया जीत बनाने वाली बाबा की मुरली है। जो बच्चे सवेरे सवेरे ये खुराक खा लेते हैं, बुद्धि को अच्छा भोजन दे देते हैं, कोई भी प्रकार से बाहरी वायुमंडल उन पर अटैक नहीं करता। जैसे कोई आत्माएं शरीर से शक्तिशाली होती हैं, तो कितनी भी बर्फीली हवाएं चलें, कैसा भी बीमारी का वायुमंडल फैला हुआ हो, लेकिन शक्तिशाली आत्माओं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और जो शरीर से कमजोर होते हैं, जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता, जो पौष्टिक खुराक नहीं लेते, उन पर छोटा छोटा कोई भी प्रभाव, थोड़ी भी ठंडी हवा चलती है तो सर्दी जुखाम हो जाता है, कोई न कोई बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार अगर किसी आत्मा ने, बाबा के बच्चे ने रोज सवेरे सवेरे ज्ञान अमृत पिया है, अच्छा भोजन खाया है, उस पर मनन चिंतन किया है, स्वयं को शक्तिशाली बना लिया है, तो कितनी भी दिन की दिनचर्या में परिस्थितियां विकराल आ जाएं, ये मुरली उनको उसमें सेफ्टी का साधन बन जाती है। कई भाई बहनों के अनुभव हम सुनते हैं कि जो प्रश्न हमारे मन में उठता है, जिस प्रकार की कोई समस्या आती है, बाबा की उसी दिन की मुरली में उसका जवाब होता है। हम कहते हैं ये ग्रंथ का वचन है, बाबा की मुरली। अगर बहुत श्रद्धा और भावना से कोई बाबा का बच्चा मुरली को ध्यान से पढ़ता और सुनता है, हर प्रश्न का समाधान उसमें उसको प्राप्त हो जाता है। बहुत से प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान किसी के पास भी न हो, भगवान की मुरली में उसी दिन उसका समाधान मिल जाता है। कई बार आप सबने देखा होगा, हम कहते हैं कि ये बाबा की टचिंग है या नहीं है, मुझे आज ये बहुत अच्छा विचार आया। कई लोग मून जाते हैं, ये अपना विचार है, मेरे मन की बात है या बाबा की टचिंग है। हम कहते हैं कंपेयर कर लो। अगर बाबा की टचिंग है, आपकी बुद्धि स्वच्छ है, क्लियर है, पहले आपकी बुद्धि में कोई भी बात नहीं थी और अचानक आई, जरूर बाबा की टचिंग है, लेकिन मैच करे बाबा की मुरली से। अगर बाबा की मुरली से वो बात मैच करती है तो हम बाबा की टचिंग समझ करके वो कर लें, अवश्य उसमें सफलता समाई हुई है। श्रीमत क्या है, कहाँ से मिलती है, कई बार इसमें भी हमारे भाई बहने मून जाते हैं। बड़ी बहन की श्रीमत को हम राय को श्रीमत कहें, दादियों की मत को श्रीमत कहें, किस बात को हम श्रीमत कहें, लेकिन मुरली ही हमारे लिए श्रीमत है। हर बात सुबह से रात्रि तक, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे कार्य में आना है, हर आत्मा के साथ कैसे संबंध और संपर्क निभाना है, हर एक बात का जवाब हर एक के लिए श्रीमत ब्राह्मणों को बाबा की मुरली से मिल रही है। इसलिए हम सभी इस मुरली को किन किन रूपों में समझ करके उसको स्वीकार करते हैं और हमारा कितना इस मुरली से प्यार रहता है। कई बाबा के नए नए बच्चे एक बात कह देते हैं, कुछ बहनों के मुख से भी हम एक बात सुनते हैं कि बाबा की मुरली वही वही होती है। अब वही वही मुरली है या नई मुरली है, उसका भी स्पष्टीकरण हम करेंगे, लेकिन मुरली हमारा जीवन महान बनाने वाली है। इस बात को स्वीकार करते हुए हम सबका अति प्यार बाबा की मुरली से हो और उसी भावना से हम मुरली को पढ़ें, सुनें और धारण करें। हमारे इस योग का आधार भी मुरली ही है। अगर कोई आत्मा सेकंड में देह से डिटैच होना चाहती है, अपनी विदेही और बीज रूप स्थिति का अनुभव करना चाहती है, तो उसके लिए ज्ञान का मनन और चिंतन पहला फाउंडेशन है। योग का पहला आधार है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन, और उस सकारात्मक चिंतन का पूरा खजाना बाबा की मुरली में भरा हुआ है। जो बच्चे बाबा की मुरली इस चिंतन को के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, एक एक बात पर गहराई में जाते हैं, उनकी बुद्धि में बहुत अच्छे सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं, जो योग का आधार बन जाते हैं। मन को अगर ज्ञान के मनन चिंतन में लगा दिया तो मन व्यर्थ में भटकना छोड़ देता है, क्योंकि उसे अच्छा अच्छा चिंतन मिल जाता है। तो ड्रामा अनुसार जो बच्चे बाबा के व्यर्थ से मुक्त हुए हैं या होना चाहते हैं, उन्हें इस मुरली को किस किस रूप से अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, ये मुरली जी अदान है। बाबा के महावाक्य नया जीवन देने वाले हैं। जैसे कोई बहुत बीमार हो, बहुत प्रकार से रोगग्रस्त हो और कोई अच्छा सर्जन, अच्छा डॉक्टर उसे अच्छी दवाई देकर तंदुरुस्त बना दे, कहते हैं इसने मुझे नया जीवन दे दिया, जीवदान मिल गया। बाबा की मुरली की कई ऐसी पॉइंट्स हैं जो नया जीवन देने वाली हैं। विकारों की कड़े से कड़ी बीमारी ऐसे सहज छूट जाती है। कोई बात अगर टच हो गई, जीवन में समा गई, तो सदाकाल के लिए उस बीमारी से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत से बाबा के बच्चों को प्राण दान मिला है इस मुरली से, इसलिए तड़फते हैं। कई बांधेलियां छुप छुप करके बाबा की मुरली पढ़ती हैं, सुनती हैं, नहीं उनके पति उनको क्लास में जाने देते हैं, तो भी कहीं न कहीं से बाबा की मुरली की पॉइंट्स सुन लेती हैं, पढ़ लेती हैं। इतना प्यार रहता है कि आज बाबा ने क्या कहा। तो बाबा की चाहनाएं क्या हैं, बाबा हम बच्चों से क्या अपेक्षा रखता है, बाबा की मुरली में स्पष्ट झलकता है, दिखाई देता है। कभी ये प्रश्न न करें बाबा क्या चाहता है, बाबा की मुरली आप पढ़ लें। तो हम सभी बाबा की मुरली से बाबा की अंदर की बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो बाबा चाहता है अगर हम वो एक भी करते हैं, कुछ भी उसका कुछ परसेंट भी अपना लेते हैं, तो बाबा की बहुत बड़ी दिल की दुआएं मिल जाती हैं, बहुत बड़ी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। तो हम सबको बाबा की चाहनाओं को, बाबा की भावनाओं को समझने का अवसर बाबा की मुरली से, बाबा के महावाक्यों से मिलता है। तो बाबा की मुरली एक ओर जीवदान दे रही है, प्राण दान दे रही है, दूसरी ओर संजीवनी बूटी का काम करती है। जैसे कोई बेहोश हो जाए, हमारे शास्त्रों में दिखाते हैं, जब लक्ष्मण बेहोश हो गया तो हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए, परख नहीं सके तो पहाड़ी उठा के ले आए। संजीवनी बूटी ज्ञान की थी। कई आत्माएं जो चलते चलते माया के वाण से बेहोश हो जाती हैं, बाबा के महावाक्य अगर कोई कानों में डाल दे, सुना दे, तो फिर से सुरजीत होकर के युद्ध के मैदान में आ सकती हैं, विजयी बन सकती हैं। इसलिए बाबा की मुरली संजीवनी बूटी का काम करती है। उस बूटी को अपने साथ रखना, उसको संभाल करके रखना, हर समय हमने देखा है कि कोई भी साथी, कोई भी सहारा न हो, लेकिन अगर बाबा की मुरली साथ होती है तो फौरन पढ़ते ही, सामने आते ही साथ और सहारे का अनुभव करा देती है। मुरली को हमने एक दर्पण के रूप में अपने सामने देखा। जैसे सवेरे उठ करके हरेक की आदत होती है, स्नान किया, स्वच्छ हुए और दर्पण के सामने जाते हैं, कहीं कोई दाग न रह जाए, कोई टोक न दे कि आपने आज कैसा श्रृंगार किया है। हमेशा दर्पण देखने की हरेक को आदत होती है। ये मुरली एक दर्पण का काम करती है। सवेरे सवेरे इस दर्पण के सामने चले जाओ, अपने दाग दिखाई देने लगते हैं कि कौन सी कमी, कौन सी कमजोरी अभी तक मुझे आत्मा में है जो मुझे भरनी है, और कैसे भरनी है उसकी युक्ति भी बाबा मुरली में बता देता है। बच्चे ये करोगे तो ये होगा, ऐसे कोई भाव कह करके वरदान नहीं दे दिया। अभी मैं विदेश यात्रा पर गया था, मुझसे लोग पूछने लगे आप वरदान कैसे निकालते हो, बहुत प्रश्न ऐसे किए विदेशियों ने। मैंने कहा वरदान निकालने का वरदान मिला हुआ है, मैं नहीं निकालता हूं, इसका भी वरदान मिला है। लेकिन वो वरदान कैसे मिला उसका भी कुछ गहरा राज है। जिस आत्मा ने अपनी बुद्धि को कहीं पर भी किसी भी व्यर्थ में नहीं लगाया है, जब बाबा ने मुझे वरदान दिया था, मैंने अभी तक वो वरदान रखा है अपने पास कि बच्चे जिसने बुद्धि को अपना व्यर्थ से बचा लिया है, सेवाओं में लगाया है, उनकी बुद्धि को वरदान मिल जाता है, वो बुद्धि जो चाहे वो कर सकती है। अगर हम इस बुद्धि से कोई भी अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो बुद्धि जो बहुत भटकने वाली है, जो बहुतों पर या तो गुणों पर प्रभावित हो जाती है या अवगुणों को देख करके उनसे नफरत और घृणा कर लेती है, बुद्धि बहुत चलायमान है, अगर उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका साधन ही है कि हम अपने को, मन और बुद्धि दोनों को ज्ञान के चिंतन और मनन में बिजी कर दें। और जितना हम इसको बिजी कर देते हैं, वही सोचते, वही पढ़ते, वही लिखते हैं, बार बार उसी पर ध्यान जाता है, तो एक फायदा हमने देखा है कि ये बुद्धि बहुत विशाल और दूरादेशी हो जाती है, बहुत विशाल बन जाती है, कुछ भी दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। आज तक कई भाई बहने ऐसा कहते हैं कि मुझे क्लास कराना पड़ता है, इसलिए मुझे बाहर के दृष्टांत देने पड़ते हैं, कहानियां पढ़नी पड़ती हैं, मुझे ये किताब पढ़नी पड़ती है, उससे कोटेशन लेते हैं। लेकिन आज तक मेरे अनुभव में बात है कि कोई भी बाहर की पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बाबा की मुरलियों का गहराई से अध्ययन किया है, उसका सार हमारी बुद्धि में समाया हुआ है, तो बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बुद्धि में रहता है। और किसी भी टॉपिक पर एक दो घंटे क्लास कराया जा सकता है। इसलिए बाहर के कोटेशन दूं, कहानियां सुनाऊं, बाहर की किताबें पढ़ करके उदाहरण लूं, वही सहारा लेते हैं जो गहराई से बाबा की मुरली को नहीं पढ़ते। कोई के भी लेख और कोई की कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर हमने बाबा की मुरलियों को प्यार से पढ़ा और उसको उसी निचोड़ से समझा है। तो आज तक भी हम अपनी दादियों से सीखते हैं, इतनी एज होने के बाद भी, अभी भी आप बड़ी दादी का अनुभव सुनेंगे, 4-5 बार मुरली पढ़ती है, शाम को चाय पर बैठी तब मुरली पढ़ रही है, रात को सोने गई तब मुरली पढ़ रही है, सुबह आंख खुली तब मुरली पढ़ रही है, अगर रात को नींद फिट गई तभी भी मुरली हाथ में है, क्लास में सुनाने आई तो भी मुरली पढ़ करके आई। तो 4-4, 5-5 बार हमारी दादियां आज तक भी मुरली पढ़ रही हैं, और कभी ये नहीं कहती कि ये मुरली तो उस समय पहले सुनी थी, रिपीट हो रही है, वही बातें हैं, कभी इनके मुख से हमने नहीं सुना। और आजकल की जनरेशन कह देती है, अरे वही मुरली तो है, नहीं सुनेंगे तो क्या हुआ, बाबा यही तो कहेगा अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, कहता तो यही है। लेकिन एक बहुत सुंदर ढंग है कहने का, और बहुत अच्छी प्यार की मीठे बच्चे कह करके सुनाने की लोरी जो है, सुनाने वाली कोई भी आत्मा हो उसको न देख करके अगर हम ये देखते हैं कि ये भगवान के महावाक्य मुझ आत्मा के प्रति हैं, सुनने में कई बार इंटरेस्ट नहीं आता, बुद्धि इधर उधर चली जाती है, लेकिन गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। अगर इसको स्टूडेंट की तरह से हम स्टडी करते हैं, नोट्स लेने की आदत डाली, तो मुझे याद है जब मैंने शुरू शुरू में मुरली अध्ययन की, हमने अपनी मुरली की नोट्स में चार कालम बनाए थे, और वो चार कालम ऐसे बनाए थे कि एक ज्ञान का कालम है, एक योग का है, एक सेवा के प्रति जो बाबा डायरेक्शन देते हैं, और एक धारणाओं का है। चारों सब्जेक्ट एक साकार मुरली में बाबा की मिल जाएंगी। और किसी दिन मान लो एक ही टॉपिक पर मुरली है, उसमें से जो अच्छी पॉइंट्स लगी उनका नोट्स लिया। तो अगर हम एक मास तक भी इस प्रकार से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी नई नई पॉइंट्स एक टॉपिक की हमें प्राप्त हो जाती हैं। शुरू शुरू में सर्वव्यापी की, गीता की, ज्ञान की जो पॉइंट्स बाबा की हैं, इस तरह से नोट करके हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक्स तैयार की थी और कई बार छप भी चुकी हैं। अव्यक्त मुरलियों की भी किताब में कुछ सार रूप में पुस्तकें छोटी छोटी मिलती हैं जो इसी आधार से बनाई गई हैं। तो आप सभी अगर इस ज्ञान को गहराई से मनन चिंतन करें, उसकी गहराई से अध्ययन करें, तो ये ज्ञान जैसे दर्पण है, जीवदान है, जीवन का श्रृंगार है, संजीवनी बूटी है, ऐसे ही हम सबको विशाल और दूरादेशी बनाने वाला, जो शास्त्रों में कहा है शंकर का डमरू अगम निगम के भेद खोलने वाला है। उन्होंने तो शंकर समझ लिया, लेकिन शिव बाबा ने अगम और निगम आदि मध्य और अंत का जो ज्ञान दिया है उसका बहुत स्पष्टीकरण बाबा की मुरली में मिल जाता है। सारे शास्त्रों का सार निचोड़ बाबा की मुरली में है। दो बातें आप सबने स्पष्ट मुरली में देखी होंगी, एक ओर डायरेक्ट भगवान के महावाक्य हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा के अपने अनुभव हैं। कई बाबा के बच्चे इस बात में मूंझते हैं, समझ नहीं पाते कि ब्रह्मा ने कहा या शिव ने कहा। बाबा तो इतना निर्माणचित है, हमेशा बाबा की मुरली में आपने सुना होगा बच्चे, बाबा तो कुछ नहीं, शिव बाबा सुनाता है, ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं कहता, आप ऐसे समझो कि शिव बाबा ने कहा है। लेकिन अगर हम सभी ध्यान से सुनते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट अनुभव हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव हैं जो हमें अनुभवी बनाने में मदद करते हैं। ये अनुभव शिव बाबा ने सुनाए हैं, ये बातें शिव बाबा की हैं जो हमको डायरेक्ट पालना दे करके महान बना रहा है। तो अगर हम सब बहुत स्वच्छ बुद्धि से और आत्म अभिमानी स्थिति में बैठ करके मुरली ग्रहण करते और सुनते हैं, व्यात्मा समझ करके मुरली सुनना, इस देह भान से डिटैच हो जाना। कई बार हम सब ने दादियों की क्लास में सुना है, कहती हैं कि कई भाई बहने बैठते यहाँ हैं, लेकिन यहाँ बैठते हुए भी क्लास में अब्सेंट रहते हैं, हाजिरी लगती है, रजिस्टर में नाम आ जाता है कि फलाना भाई आया क्लास में, फलानी बहन आई, लेकिन अगर आई है तो उसकी हाजिरी मन और बुद्धि से भी है या यहाँ बैठ करके वो बाहर भटक रही है। क्लास में बैठे हैं, स्थूल रूप में शरीर यहाँ है, लेकिन विचारधाराएं अगर बाहर बह रही हैं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो बाबा की मुरली सुनते हुए भी जैसे हम अनसुना कर देते हैं, हमारा जीवन खाली कोरा कागज की तरह रह जाता है। कोई बात आती है, कोई कहे आज जाओ आप क्लास करा दो, आप कोर्स करा दो, या इस बात भाई का ये प्रश्न है इसका उत्तर दे दो, कहता आप मुझे छोड़ दो, मैं नहीं सुना सकता हूँ, आप फलाने को बोल दो। क्यों? बुद्धि खाली है। बुद्धि को ज्ञान रत्नों से अगर हमने भरपूर नहीं रखा है तो हम एम्प्टी ही रहेंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है इस बुद्धि को कभी भी इधर उधर की बातों में भटकाया न जाए और ज्ञान से खाली न रखा जाए। क्योंकि जब हम संकल्प शब्द कहते हैं, संकल्प चल रहे हैं, एक बार मैं अचानक अपने मधुबन में ऐसे बैठा था और हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब जगदीश भाई हमारे सामने आए और मुझे देखकर बोलने लगे, तुम क्या सोच रहे हो? तो जैसे हम लोग कॉमन भाषा में बोल देते हैं, कुछ नहीं भाई साहब। तो उन्होंने मुझे ऐसी सुंदर शिक्षा दी, मुझे आज तक नहीं भूली। कहने लगे कि ऐसा कोई समय होता है जिस समय आत्मा कुछ न सोचती हो? ये प्रश्न मेरे से किया कि आप सोचते हो, समझते हो कि जब नाम है संकल्प, तो ये संकल्प माना जो सारा कल्प चलता है, रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है। तो आप ये कैसे कहते हो, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं? कुछ तो जरूर सोच रहे हो। आप सभी सोचना, हम यहां सब बैठे हैं, कोई ऐसा है जो बिल्कुल नेट संकल्प होकर के बैठा हो कि मुझे कोई संकल्प नहीं चलता? ये भी संकल्प चलता है कि मेरा कोई संकल्प नहीं चलता, इससे कोई छूटता नहीं है। लेकिन वो संकल्प ज्ञानयुक्त है, अपने कंट्रोल में है, जहां हम चाहते हैं वहां ही वही चिंतन करता है, वहीं पहुंचता है, या वो इधर उधर भटकता है, ये योगी आत्माएं उसको परख कर कंट्रोल कर सकती हैं। हम सबको ये कला, ये चेकिंग अवश्य सीख लेनी चाहिए कि ये संकल्प हमारे इधर उधर बहते न रहे, ऐसा इसका बहाव न हो जो जिधर जाए उधर ही बह जाए, उसके साथ साथ बुद्धि भी चली जाए, उस पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण हो। लेकिन वो तभी हो सकता है जब बुद्धि शक्तिशाली है, जब बुद्धि को हमने ज्ञान का भोजन, अच्छा भोजन खिलाया है। मुरली उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा भोजन है, और इसको उसी प्यार से रोज जो इसको स्वीकार करते हैं, बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। कोई भी अटैक माया का नहीं होता, इसलिए माया जीत बनाने वाली ये हमारी बाबा की मुरली है। और साकार मुरली में अव्यक्त मुरली एक टॉपिक पर चलती है, बहुत अच्छी लगती है भाई बहनों को, और अव्यक्त से जिनका जन्म हुआ है उनको तो यही लगता है कि अव्यक्त में सब कुछ है। लेकिन एक बार एक भाई, एक युगल मुझसे मिलने आया और एक बात बहुत सुंदर कही कि मेरा अभी तक बाबा की अव्यक्त मुरली से बहुत प्यार था और मैं अव्यक्त मुरली के सिवाय नहीं रह सकता और साकार मुरली में मैं बोर हो जाता हूं। लेकिन मेरा एक अनुभव है, उसने खुद बताया कि बाबा की साकार मुरली हमने नहीं सुनी, इसलिए मुझे ये पता नहीं चला काम महाशत्रु है। अव्यक्त मुरली पढ़ता था, बाबा प्योरिटी की बहुत गहरी गहरी बातें सुना दी, लेकिन जो साधारण सा शब्द है कि महाशत्रु है, ये उसको साकार मुरली से मिला। बोला, हमने शत्रु के रूप में उस दिन स्वीकार किया जिस दिन हमने साकार मुरली पर ध्यान दिया। तो बाबा की मुरलियां सागर की लहरें हैं, एक पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट आ जाती है। कई लोग कह देते हैं कि आप उसको करेक्शन एडिशन कर देते हो क्या, कई ऐसी बातें हैं जो वर्तमान से लगती हैं। कहते हैं हमने आज तक कोई मुरली में एडिशन नहीं की है, कोई बात की बाबा की उस समय की मुरली भविष्य दृष्टा ने चलाई, उसी प्रमाण चलाई है, लेकिन समय प्रमाण जो वर्तमान समय चल रहा है उसके प्रमाण कुछ बातें उसमें करेक्शन अवश्य हो जाती हैं। करेक्शन माना क्या करेक्शन होती है, ऐसी कोई बात नहीं कट की जाती, लेकिन जैसे बच्चों की वृद्धि हुई है, बहुत बड़ा विस्तार हो गया है, जो महात्माएं, जो साधु, जो संत, जो शास्त्र पढ़ने वाले बहुत विरोध करते थे, और उस समय बाबा ने सबको उनसे न्यारा बनाने के लिए, डिटैच करने के लिए कुछ ऐसे महावाक्य उच्चारण किए जो आज की भाषा में सख्त महावाक्य हैं। अगर उनको हम कहें कि आप ऐसे हो, तो वो हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आज हमारे क्लास में बैठते हैं। बाबा से, बाबा के परिवार से, बाबा की मुरली से बहुत उनका प्यार है, लेकिन अगर डायरेक्ट भगवान के वो महावाक्य सुन ले जो उस समय बाबा ने कहे थे, तो हो सकता कहेंगे भगवान कैसे बोला, ये तो शायद हमारे लिए गाली है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतने अच्छे सुंदर शब्दों में शिक्षाएं दी थी, जो शिक्षाएं जिन बच्चों ने धारण की वो सहज ही नष्टो मोहा बन गए, सहज ही सबसे न्यारे और प्यारे बन गए। आज का समय वो नहीं रहा जो हर बात को स्वीकार कर सके। इसलिए कुछ बातें, जैसे मिसाल के तौर पर बाबा कई बार कहते थे, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपने को भगवान कहलाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान के आधार से कई अपने को भगवान कहला करके पूजा करते हैं, और भगवान जिनको खुद कहे मैं भगवान हूं, उसको शास्त्रों में ही कहा गया ये हिरण्यकश्यप है। तो बाबा कहते थे बच्चे सब हिरण्यकश्यप हैं। और ऐसे समय पर अगर हम कहते हैं इस समय, तो कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को ठेस पहुंचती है, इसलिए बाबा की मुरली को थोड़ा सा इसी में परिवर्तन किया गया। ज्ञान वही है, वेश वही है, धारणाएं वही हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। लेकिन वर्तमान समय हम सभी ब्राह्मण आत्माएं अपना जीवन महान बना सकें, सभी उसको उसी रीति से ग्रहण करके भगवान वाच्य की रीति से स्वीकार कर सकें, इसलिए उसको जो उसमें सिंधी लैंग्वेज थी, बहुत सी ऐसी बातें आती थी जो लोग नहीं समझ पाते थे, उसको सरल भाषा की गई है। तो आप सभी जो बाबा की मुरली सुनते हो, अपने जीवन में धारण करते हो, और मैं समझता हूँ कि आप जो भी मधुबन में आए हैं वो सब बहुत प्यार से और रेगुलर स्टडी करते होंगे। जो इस क्लास में रोज पढ़ने वाले बाबा के बच्चे हैं, रोज सुनते और पढ़ते हैं, वो हाथ उठाओ। सभी हैं, 99% दिखाई देना। अच्छा, 1% जो नहीं उठाया हाथ वो उठाओ। कभी कभी वाले ऐसे हैं, ये भी हैं कुछ एक भाई बहने। हम आपको एक शुभ राय अवश्य देंगे, जैसे अगर किसी दिन भोजन न मिले, कमजोर हो जाता है शरीर, वैसे उपवास लोग रखते हैं, लेकिन मुरली का उपवास नहीं रखना, ये बुद्धि को शक्ति प्रदान करने वाली बहुत सुंदर औषधि है। कोई भी समय मिले, हम कहते हैं अधिक समय नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कहे मुझे 5-10 मिनट भी अपने लिए नहीं है। अपने लिए, दूसरों के लिए तो हम 24 घंटे हैं ही, लेकिन अपने लिए हमको 5-10 मिनट आधा घंटे अवश्य निकालना है, और अधिक नहीं। सारी मुरली हमको सुनने का समय अगर नहीं भी मिला, तो कम से कम उसका सार, क्वेश्चन आंसर, वरदान, स्लोगन, क्लास में नहीं जा सके तो फोन से भी हम सुन सकते हैं, उसका सार भी मंगा सकते हैं, अपने साथी सहयोगी की डायरी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यह समझ करके हमारी रेगुलर हाजिरी बहुत जरूरी है, भगवान के रजिस्टर में हाजिरी लगनी चाहिए। हाजिरी लगे और साथ साथ इस बुद्धि को शक्तियां प्राप्त होती रहें, अच्छे चिंतन मिल जाएं। अच्छा चिंतन अगर हमने एक बार कर लिया, तो अनुभव ये कहता है कि कितने भी बात व्यर्थ की बातें हो, नेगेटिव वातावरण हो जाए, लोग अपशब्द भी बोल करके चले जाएं, लेकिन बाबा की मुरली हमारे लिए सुरक्षा का कवच बन जाती है। याद रहती है मुरली, ड्रामा की बात याद रहती है, नथिंग न्यू की स्मृति रहती है, वापस जाने की स्मृति रहती, क्योंकि बाबा की ये बातें किसी न किसी मुरली में किसी न किसी तरह से आती हैं। बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, मायाजीत बन जाओगे, त्रिकालदर्शी बनो, क्रोधजीत बन जाओगे, ऐसी ऐसी बाबा की एक न एक कोई न कोई सुंदर शिक्षा मिल जाती है। वो स्मृति में अगर रहती है तो क्रोध दिलाने वाली परिस्थिति आ जाए, वृत्तियों को विकारी दूषित बनाने वाली कोई ऐसी वायुमंडल घड़ी आ जाए, आप अपनी वृत्ति को शुद्ध बना सकते हो, अपने मन को शीतल योगी बना सकते हो, हिलाने वाली परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हो, अगर आपने सुबह सुबह इस ज्ञान अमृत को पिया है तो। हम सबको ड्रामानुसार ड्यूटी प्रमाण 8-10 बार मुरली पढ़नी पड़ती है, पढ़ते हैं, टाइप करते हैं। पहले स्टेंसिल काटते थे, 3-3 बार टाइप करते थे, उसको 3 बार करेक्शन करते थे, 6-7 बार तो ऐसे ही पढ़ना हो जाता था, क्वेश्चन आंसर बनाना है, सार निकालना है। लेकिन अगर आप अधिक नहीं, 1-2 बार भी इसको पढ़ें, ध्यान दें, तो मैं समझता हूं उसका एसेंस अंदर समाता जाता है, और बुद्धि में अगर एसेंस रहता है तो माया किसी भी प्रकार से हलचल में नहीं लाती। आती हैं बातें, लेकिन सहज ही हल मिल जाता, अपनी बुद्धि ही हल दे देती, दूसरे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप हमें बताओ मैं क्या करूं, मेरे आगे ऐसा पेपर आ गया। क्यों हम किसी का सहारा लें, क्यों आधार बनाएं? अगर हम निराधार बनना चाहते हैं, हर परिस्थिति को पार करना चाहते हैं, तो बाबा की मुरली एक दिन भी मिस न हो, रेगुलर स्टडी की आदत बन जाए, पढ़ना ही है, सुनना ही है, आज की मुरली क्या बाबा ने कहा है, आज का ग्रंथ का वचन क्या है। ऐसे नहीं, ये तो 5 साल पहले रिपीट हुई थी, वही मुरली आ गई, भले वही मुरली हो, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती है, हमने देखा है कि रिफाइन बुद्धि कैच करती है कि बाबा ने ये बात किस उपलक्ष्य में कही है, फौरन टच होती है और वो नई ढंग से लगती है, ये नई बात है। तो नवीनता की दृष्टि से, नवीनता के रहस्य को समझते हुए अगर हमारे अंदर उसका रस बैठ गया तो मिस होगी तो लगेगा बहुत कुछ हमने मिस कर दिया। तो अगर आप योगी जीवन, पवित्र जीवन, महान जीवन, निर्विघ्न जीवन, एक रस स्थिति वाली जीवन बनाना चाहते हैं तो ये मुरली कभी भी मिस न हो, एक दिन भी मिस न हो। बहुत प्यार से उसको स्वीकार करते हुए, प्यार से उसको पढ़ो, इतना संभाल करके रखो। दादी हमारी कभी कभी ऐसे करती है, मुरली लेगी, ऐसे नैनों पर रख लेगी, उसको चुम्बन कर लेगी, अरे भगवान ने ये कहा है, इतना प्यार है अभी तक भी। तो दूसरा कोई भी आधार जरूरत ही नहीं है। बुद्धि बहुत बहुत विशाल रहती है, बहुत अनेक व्यर्थ से बच जाती है जिसका बाबा की इस मुरली से प्यार है। तो आप सभी, भले कोई भी सुनाए, टीचर को मत देखो, ये भगवानों आच है। कई लोग मुरली सुनाते सुनाते अपनी बातें, अपने कई ऐसे विचार जो होते हैं, सहारा मुरली का लेते हैं और उसमें अपनी ऐड कर देते, सुनने वाले का मूड खराब हो जाता है और कहते हैं क्या मुरली सुनना, ये तो अपनी सुनाता है। लेकिन भले कोई आत्मा ऐसा करती है, वो गलत कर रही है, हम जानते हैं नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। भगवान की मुरली में अपनी मत ऐड कर देना, अपनी शिक्षाएं ऐड कर देना गलत है, लेकिन बाबा की मुरली से हमारा मन न उठ जाए, हम उसको उसी रीति से स्वीकार करके, बाबा ने क्या कहा, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या चाहता है, उसको हम पढ़ते और सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत अच्छी उन्नति का अनुभव होता है। अगर कोई सहज पुरुषार्थी बनना चाहता है, अपनी स्व उन्नति करना चाहता है, निरंतर योगी बनना चाहता है, तो उसका केवल एकमात्र आधार है बाबा की मुरली, मुरली, मुरली। ओम शांति।
तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति,
ज्ञान की इस ज्योति में मैं बेहवान ही भूलती।
शिव बाबा तेरे ज्ञान। योग की शक्ति से मन में